Iran Radio Podcast.
दोस्तों, जितना पुराना इतिहास इंसान का है उतना ही पुराना युद्ध और शांति का भी है। जब से इंसान है युद्ध और शांति भी तभी से है। दुनिया में अलग अलग वजहों से जंगें लड़ी जाती रही हैं। धर्म के नाम पर लड़ी जाने वाली जंगों का एक सिलसिला था जिसे हम क्रूसेड्स के नाम से जानते हैं। क्रूसेड्स पॉडकास्ट का ये 19वां एपिसोड है। ईरान रेडियो से मैं हूँ सैयद मीसम अब्बास। अगर आप दूसरे दिलचस्प विषयों पर भी पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iranradio.ir/hi पर विजिट कर सकते हैं। नुकसान पहुंचाने वाले पहलू के अलावा युद्धों के अच्छे पहलू भी होते हैं। मेडिकल और फार्मास्यूटिकल ज्ञान इन्हीं पहलुओं में से एक है। क्रूसेड में सैनिकों के कैंपों पर हमला करने वाली खतरनाक बीमारियों के साथ साथ युद्धों में पहुंचने वाले जख्मों ने इस साइंस का विस्तार किया और उसे डेवलप किया। इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता था कि किसी शहर पर क्रूसेडर सेना का कब्जा हो जाता था, इसलिए प्रोफेशनल हमलावरों को अपना ज्ञान और स्किल दे सकते थे या उन्हें देना पड़ता था। ये देखते हुए कि उस जमाने में मुसलमानों ने काफी तरक्की कर ली थी, हमलावर क्रूसेडरों ने मुसलमानों से बहुत सारा ज्ञान और स्किल सीखा, एक इतिहासकार ने लिखा है। हकीम अबू अल मजद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को अपने साथ हॉस्पिटल घुमाने ले गए और उनसे मरीजों के बारे में पूछा। इस मुस्लिम डॉक्टर के नेतृत्व में नर्स और स्टाफ था जो मरीजों की देखभाल करता था और दवा और इलाज का ख्याल रखता था। उनकी सिफारिशों को बिना देर किए लागू किया जाता था। वो महल में भी जाते थे और सरकारी अफसरों और मरीजों का इलाज करते थे। सुल्तान नूरुद्दीन ने इस हॉस्पिटल को कई मेडिकल बुक्स डोनेट की थी। डॉक्टरों और स्कॉलर्स का एक ग्रुप आता और हकीम अबू अलमज से मेडिकल तालीम सीखता था। ये तब की बात है जब विल डोरेंट उस समय यूरोपियन लोगों की मेडिकल कंडीशन के बारे में लिखते हैं। असल में पुराने जमाने की मेडिसिन ऐसी थी, माएँ अलग अलग घरेलू नुस्खों से, बूढ़ी औरतें मोमबत्तियों और तावीज़ों से और जड़ी बूटियों से इलाज करती थीं। झोला छाप धोखेबाज डॉक्टर भारी फीस लेकर कभी कभी ठीक करने के बजाय मरीजों की जान ले लिया करते थे। इन हालात में मुसलमानों से मिलने के बाद यूरोपियन लोगों ने उनसे उस जमाने की एडवांस मेडिकल नॉलेज सीखी और उसे यूरोप ले गए। मार्टिन रसेल के मुताबिक 12वीं से 17वीं सदी तक इब्न सीना की किताबों का इस्तेमाल यूरोप में मेडिसिन के लिए गाइड के तौर पर किया जाता था। हालांकि हिप्पोक्रेट्स और गैलेन की पुरानी मेडिसिन ने इस्लामिक दुनिया की मेडिसिन पर असर डाला था, लेकिन क्रूसेड के दौरान मुसलमान, ग्रीक, इंडियन और ईरानी मेडिसिन को मिलाकर एक असरदार मेडिसिन बनाने में कामयाब रहे जो यूरोपियन मेडिसिन से कहीं ज़्यादा एडवांस्ड और साइंटिफिक थी। स्पेन में मुसलमानों से मिलने और क्रूसेड के नतीजे में यूरोपियन मुसलमानों की मेडिकल साइंस से परिचित हुए। ये कहा जा सकता है यूरोप में रेनेसांस और उसके बाद हुए साइंटिफिक, सोशल, इकोनॉमिक और यहाँ तक कि पॉलिटिकल बदलावों की एक वजह क्रूसेड के दौरान यूरोपियों का मुसलमानों के साथ संपर्क था। मिस्र और सीरिया में यूरोपियन लोगों ने उन इलाकों के मूल ईसाइयों के संपर्क से अरबी भाषा अच्छी तरह सीखी। इस वजह से उन्होंने वहां के माहौल, लाइफस्टाइल, ज्ञान और स्किल्स के बारे में सीखा। इसी वजह से 13वीं सदी में अलमकीन जैसे ईसाई अरब इतिहासकारों की रचनाएं यूरोप में मुस्लिम इतिहासकारों की रचनाओं से पहले जानी जाती थी। 13वीं सदी में माइकल स्कॉट ने एक मुस्लिम फिलोसोफर इब्ने रुश्द की रचनाओं का लैटिन में ट्रांसलेशन किया था। यूरोपियन लोगों ने अरबी सीखकर इस्लामिक दुनिया की साइंटिफिक किताबों का यूरोपियन भाषाओं में ट्रांसलेशन करने की कोशिश की। जिन्हें साइंस और फिलॉसफी में दिलचस्पी थी उन्होंने ज्ञान के सोर्स तक पहुंचने के लिए अरबी सीखी। मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री और एस्ट्रोनॉमी मुस्लिम ज्ञान के दूसरे फील्ड थे जिनसे यूरोपियन लोग क्रूसेड के दौरान परिचित हुए। एक इटालियन व्यापारी फिबोनाची ने मिस्र की यात्रा पर एरिथमेटिक और मैथमेटिक्स का ज्ञान हासिल किया। मैथ पर एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने जीरो नंबर, भारतीय अंक और डेसिमल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने अरबी अलजबरा और मुस्लिम मैथ की वोकेबुलरी और फार्मूले भी सीखे और मुसलमानों की नकल करते हुए ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलजबरा का इस्तेमाल किया। अलजब्र शब्द और अलख्वारज्मी के एल्गोरिदम के टाइटल का लैटिन में भी ट्रांसलेशन किया गया। एरिथमेटिक की साइंस यूरोप में कई सदियों तक इसी नाम से जानी जाती थी। क्रूसेड्स के नतीजे में यूरोपियन ने मुसलमानों से कंपास सीखा और इसका इस्तेमाल अपनी मैरीटाइम इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए किया। यूरोपियन ने इस टूल का इस्तेमाल दुनिया के सबसे दूर के हिस्सों में ट्रैवल करने, अनजान इलाकों को खोजने और इन इलाकों के मूल निवासियों का शोषण करने के लिए किया। कंपास का इस्तेमाल करने वाले पहले यूरोपियन नाविक दक्षिणी इटली में अमाल्फी के नाविक थे, जिनके मिस्र और सीरिया के साथ ट्रेड रिलेशंस थे। क्रूसेड्स के दौरान इटालियन और फ्रेंच ट्रेड रिलेशंस ईस्ट के साथ इतने बढ़ गए कि इटालियन शहरों के कमर्शियल राइवल बाइजेंटियन को बहुत नुकसान हुआ। इस व्यापार में पश्चिमी लोग आमतौर पर इस्लामी देशों में हथियार लाते थे और यहां से सोना और दुर्लभ सामान ले जाते थे। हालांकि पोप ने इस्लामी देशों के साथ व्यापार पर बार बार रोक लगाई, लेकिन किसी ने पोप के प्रतिबंध पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इस्लामी देशों के साथ व्यापार से पश्चिमी लोगों को जो भारी मुनाफा होता था वो पोप की सलाह से ज़्यादा ज़रूरी था। हालांकि चर्च ने व्यापारियों को इस्लामी मुल्कों के साथ व्यापार करने से सिर्फ दिखावे के लिए मना किया था, क्योंकि उसे खुद इस व्यापार से बहुत फ़ायदा होता था, इतना ज़्यादा कि पश्चिमी व्यापारियों को पैसे देने वाली संस्थाओं में से एक खुद चर्च था। चर्च व्यापारियों को दिए गए कर्ज पर बहुत ज़्यादा ब्याज कमाता था। ये इस बात के बावजूद था कि सूद और ब्याज से ईसा मसीह ने मना किया था। सोने के अलावा यूरोपियन व्यापारी ज़्यादातर सिल्क के कपड़े भी पूरब से पश्चिम ले आते थे। यूरोपियन बाज़ार इस्लामिक देशों के कपड़ों से भरा हुआ था। ऊन और कॉटन भी मिस्र से इटली और दूसरे यूरोपियन देशों में काफ़ी एक्सपोर्ट किए जाते थे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे बड़ा बदलाव था, जो धर्म युद्धों में लंबे समय तक मेलजोल का नतीजा था। व्यापार के अलावा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी पूरब से पश्चिम की ओर चली गई। उदाहरण के लिए कांच बनाने की इंडस्ट्री टायर और आका से यूरोप ट्रांसफर हो गई। इस बारे में अल्बर्ट मैलेट लिखते हैं, व्यापारिक बाजार की रौनक, शहरों की ज़रूरत और आज़ादी और सहनशीलता के फैलने से इंडस्ट्री फैली और पश्चिमी कारीगर पूरब से वो सीखने के लिए प्रेरित हुए जो वो नहीं जानते थे। उन्हें अपने व्यापार में माहिर बनने और मुसलमानों से मुकाबला करने में ज़्यादा समय नहीं लगा। वो भी इकट्ठा हुए, यूनियन बनाई और जमींदारों के दबदबे से बाहर निकले। 13वीं सदी में यूनियन बनाना खास तौर पर पॉपुलर और ज़रूरी हो गया था। क्रूसेड के दौरान क्रूसेडर कई तरह के पौधे और जानवर यूरोप ले गए, जो एशिया और इस्लामी देशों में ही पाए जाते थे। वो गन्ने से परिचित हुए और चीनी को रिफाइन करने का तरीका सीखा। जब क्रूसेडरों ने मुस्लिम शहरों पर कब्जा किया तो उन्होंने वहाँ के लोगों को बुरी तरह से मारा और लूटा, कैदियों को मार डाला और बस्तियों को तबाह कर दिया, जबकि मुसलमानों ने उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया था। माफ़ी, सहनशीलता और सहम युद्धों में मुसलमानों की खासियत थी। ये खासियत खास तौर पर क्रूसेड के शुरुआती दौर में देखी गई। इन युद्धों में शामिल दोनों पक्षों के बर्ताव की तुलना करने का सबसे अच्छा उदाहरण यरूशलम की जीत की कहानी है। हमने बताया था कि जब क्रूसेडरों ने यरूशलम पर कब्जा किया तो उन्होंने वहाँ के मुस्लिम नागरिकों पर क्रूरता की। यहाँ तक कि लिखा है कि क्रूसेडरों ने मारे गए और पकड़े गए मुसलमानों का मांस भूनकर खाया। लेकिन जब मुसलमानों ने सलाहुद्दीन अयूबी के समय में क्रूसेडरों से उसी शहर पर फिर से जीत हासिल की तो उन्होंने क्रूरता या बर्बरता नहीं की। मुसलमानों के इस इंसानी और नैतिक व्यवहार का लंबे समय में क्रूसेडर्स पर अच्छा असर पड़ा। यूरोपियन क्रूसेडर्स ने मुसलमानों से धार्मिक सहनशीलता और बिना वजह की नफरत नहीं करना सीखा। उन्होंने मुस्लिम कमांडरों की आंखों में अपने लिए सम्मान देखा। जब सलाहुद्दीन ने सुना कि रिचर्ड द लायन हार्ट बिस्तर पर है तो उन्होंने रिचर्ड का इलाज करने के लिए अपने खास डॉक्टर को दवा के साथ दुश्मन के पास भेजा। फिलिप सेकेंड का मुसलमानों के प्रति नर्म व्यवहार शायद मुसलमानों के इसी आचरण का नतीजा था। क्रूसेड्स का इस्लामिक दुनिया पर भी असर पड़ा। हालांकि यूरोप पर क्रूसेड्स के अच्छे नतीजे इस्लामिक दुनिया की तुलना में बहुत ज्यादा थे, लेकिन युद्ध में शामिल मुस्लिम देशों के लिए इन नतीजों से वाकिफ होना बहुत जरूरी था। मुसलमानों के लिए क्रूसेड्स का पहला नतीजा बड़ी संख्या में मुसलमानों का मारा जाना और उन्हें भारी माल और इज्जत का नुकसान उठाना था। मुसलमान जो मुस्लिम देशों में लंबे समय की सुरक्षा की वजह से शांति और आराम की जिंदगी जी रहे थे, उन पर अचानक क्रूसेडर सेनाओं ने हमला कर दिया। वो हर मुस्लिम शहर और बस्ती में पहुंच गए और क्रूरता और जुल्म को चरम पर पहुंचा दिया। कुछ समय के लिए लेवेंट इलाके से सुरक्षा गायब हो गई और कई व्यापारियों ने ज्यादा पूर्वी इस्लामी इलाकों का रुख किया। इसके बाद मिस्र पर क्रूसेडर के हमलों और साथ ही इस्लामी इलाके की पूर्वी सीमाओं पर मंगोलों के हमले और बगदाद तक उनके कब्जे ने मुसलमानों की शांति और सुरक्षा छीन ली। ये साफ है कि इंसानी समाज अस्थिरता और असुरक्षा की हालत में कभी भी आध्यात्मिक और भौतिक तरक्की नहीं कर सकता। शायद मुसलमानों का अपना तरक्की जारी न रख पाना ही इन लड़ाइयों का नतीजा था। भौतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को खोकर देश पीछे की ओर चले जाते हैं। यूरोपियन के ऐसे हालात नहीं थे, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों की सरजमीन में ही उनसे लड़ाई लड़ी। इसलिए मुसलमान वर्षों तक असुरक्षा और चिंता में रहे और अपनी तरक्की जारी नहीं रख सके।